اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نقد فرماتے ہیں، ایک ماں باپ کا نافرمان اور دوسرا اپنے شیخ کا نافرمان، شیخ سے گستاخی کرنے والا. حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک عالم تھے، عالم تھے اور عالم بھی معمولی عالم نہیں تھے. اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ حضرت حکیم الامت جب تقریر کرتے تھے تو وہ پیچھے بیٹھ کر کے اس تقریر کو عربی میں تبدیل کرتے تھے، اور حضرت تقریر ختم کرتے تو وہ لا کر عربی میں پیش کر دیتے. ایک دفعہ حضرت سے معمولی سی تنخواہ کے اوپر کچھ بات ہو گئی، بس دل کے اندر بدگمانی آ گئی، حضرت کو برا بھلا کہا اور خانقاہ سے بستر اٹھا کر کے چلے گئے. تو حضرت دادا نے فرمایا کہ جب مرے تو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو کر کے مرے، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو کر کے مرے. اور اسی طریقے سے والدین کا معاملہ ہے. آج لوگ والدین کو سمجھتے ہیں یار یہ کیا ہے، پال پوس دیا، انہوں نے بڑا کر دیا، اب کیا حق ہے، اب ہماری مرضی، ہم کس طرح زندگی گزارے. نہیں، انہوں نے پالا، انہوں نے جب چھوٹا تھا جب ماں نے کتنی فکر کی. دادا نے فرمایا کہ محبت کیسے سمجھ میں آتی ہے، فرمایا ایسے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص دھوپ میں کام کر رہا تھا، دھوپ میں گرمی کے دن تھے، دھوپ کے اندر کام کر رہا تھا باہر. اس کی ماں آئی اور اس سے کہا بیٹا اندر آ جا، دھوپ جب کم ہو جائے تو پھر آ کر کے کام کر لینا. اس نے کہا اما تھوڑا سا کام باقی ہے، تھوڑا سا یہ کر لوں پھر آتا ہوں. پھر ماں آئی تھوڑی دیر کے بعد، پھر کہا بیٹا باہر دھوپ بہت زیادہ ہے، باہر کام مت کر، تھوڑی دیر کے لیے گھر میں آ جا، پانی پی لے، پھر جا کر کام کر لینا. تو اس نے پھر بھی نہیں سنی تو ماں اندر گئی اور اس کے بچے کو اٹھا کر لایا اور دھوپ میں رکھ دیا. تو وہ فوراً سیڑھی سے اترا اور اس نے کہا اما آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ نے میرے معصوم بچے کو لا کر کے دھوپ کے اندر رکھ دیا. کہا بیٹا جس طرح تجھے اس سے محبت ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، تیری اولاد تیرے لیے تیری اولاد ہے اور میری اولاد میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تب وہ روتا ہوا واپس چلا گیا، بچے کو اٹھایا اور واپس چلا گیا. تو یہ ماں کی محدود محبت ہے. تو ماں باپ کے حقوق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حق رکھا ہے ماں باپ کا؟ آج اولاد سمجھتی ہے کہ ہم بڑے ہو گئے، اب ہم اپنی خودرائی سے چلیں گے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے ماں باپ کی سننے کی، اب ہمیں کیا ضرورت ہے. جنہوں نے ماں باپ کی سنی ان کی اولاد ان کی سنتی ہے. دادا نے فرمایا کہ ایک نوجوان اپنے باپ کو سڑک پر گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹ رہا تھا، ایک مقام تک لایا. جب اس مقام پر پہنچا تو باپ نے کہا بیٹا اگر اس سے آگے بڑھا تو تو ظالم ہو جائے گا. اس نے کہا ابا گھر سے لے کر یہاں تک لے گھسیٹ کر کے لایا، ابھی ظالم نہیں ہوا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تیرے دادا کو بھی یہیں تک گھسیٹا تھا، میں نے بھی تیرے دادا کو یہیں تک گھسیٹا تھا، اگر اس سے آگے بڑھا تو ظالم ہو جائے گا. تو آج ہم ان کی اہمیت نہیں سمجھتے، حالانکہ شریعت مطہرہ نے ماں باپ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی ہے کہ اگر ان کو بڑھاپے کے اندر پائے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ممبر کے اوپر تشریف لے گئے، جب پہلے ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب اترے نیچے خطبہ دے کر کے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک خلاف سنت چیز سے خلاف عادت ایک چیز سے کی، خلاف عادت کیا تھی کہ آپ نے آمین کہا. فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ، جو اگلے مہینے شروع ہو رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ شخص اس کے اندر اپنی اللہ سے مغفرت نہ کروا سکے. میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کو ماں باپ اس کے بڑھاپے کے اندر ملے اور وہ ان کی خدمت نہ کرے. تو ایک تو جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا और फिर नबी अलैहिस्सलाम का आमीन कहना कहाँ से कामयाब होगा? आज क्या सिखलाया जाता है कि अरे माँ बाप कुछ भी नहीं, बेटा बड़ा हो तो सबसे पहले ये सोचता है कि मुझे अपना कमाना, अपना खाना, अपनी शादी करना और अलग रहना है। माँ बाप के साथ रहकर के क्या करेंगे? ये इस्लाम ने एक जो माशरती निजाम दिया था मुसलमानों को कि एक घर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं और खुश रहते थे। आज से कुछ साल पहले तक देखें, एक घर के अंदर कितने भाई रह रहे हैं, सब मोहब्बत से रह रहे हैं, सबके अंदर खुशियां है, सबके बच्चे मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं। पुरानी औरतें, पुराने बूढ़े वो क्या करते थे? जुम्मे के जुम्मे पूरा खानदान को जमा करते थे। उससे क्या था? एक मोहब्बत थी, सबके दरमियान एक मोहब्बत थी, एक तारुफ था। आज तो तारुफ तो क्या देखकर पहचानते भी नहीं, कह रहे ये कौन है? अच्छा अच्छा इतने ये बस ये बेटा भी हो गया, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो किसकी वजह से? दीन से दूरी की वजह से। आज क्या हुआ? हमने यूरोप के निजाम को अपना लिया और जो इस्लाम का निजाम था उसको छोड़ दिया। हालांकि इस्लाम ने हमें हर चीज सिखलाई, यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस्तिंजे का तरीका तक सिखलाया। और इस्तिंजे के तरीके के अंदर कितने पत्थर इस्तेमाल होंगे वो भी सिखलाया, पत्थर और पानी दोनों इस्तेमाल होगा ये भी सिखलाया। तो जो नबी एक एक चीज सिखला करके जाए, फिर भी हम उसके निजाम जिंदगी जो उसने हमें आता दिया, हम उसके ऊपर अगर अमल न करें तो दोस्तों कमजोरी किसकी है? बोलो। हम आते हैं खानकाहों के अंदर, यहाँ पर अब रमजान करीब है, मदारिस की छुट्टी है, बहुत सारे लोग वक्त लगा रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो इस फिक्र को लेकर के आते हैं कि जब हम यहाँ आए तो हमें यहाँ से कुछ लेकर के जाना है। अगर इंसान बाजार किसी मुल्क में जाता है कमाने के लिए तो वहाँ क्या करता है? हम भी कभी अल्लाह ताला अगर उम्रे पर जाने की तौफीक अदा फरमाते हैं तो वहाँ पाकिस्तानियों को देखें, यहाँ देखा जो हमारे साथ थे, बचपन में हमारे साथी थे, खेलना कूदना सब साथ था, यहाँ जिस तरह सोते थे वहाँ नहीं सोते। भाई क्यों नहीं सोते? क्या यार परदेश है, यहाँ कमाने के लिए आए, सोने के लिए थोड़ी आए। तो दोस्तों हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर परदेशी बना करके भेजा है, हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में परदेशी बना करके भेजा है कि आखिरत में जितना ऐश उठाना है इस दुनिया में उतनी मुशक्कत बर्दाश्त कर लो, उतना ऐश तुम्हारे हिस्से का आखिरत के अंदर लिख दिया जाएगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगी इसी मंजर को पेश करती है कि सहाबा के पास कपड़े नहीं है कोई परवाह नहीं, खाने के लिए नहीं है कोई परवाह नहीं, हर चीज में उनके सामने क्या होती थी? आखिरत सामने होती थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, नबी अलैहिस्सलाम को देखा कि खजूर की चटाई के ऊपर लेटे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को आते हुए देखा तो उठ करके बैठ गए। तो हजरत उमर ने देखा कि पीठ के ऊपर उस खजूर की चटाई के निशानात थे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने कैसर और किसरा को इतनी दौलत दी है, आप अल्लाह ताला से थोड़ी सी कुशादगी मांग लीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मामलात में थोड़ी कुशादगी पैदा फरमा दे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया उमर, उनका हिस्सा दुनिया ही के अंदर है और उनको जो कुछ मिलना है दुनिया के अंदर मिलना है, और मेरा हिस्सा और मुसलमानों का हिस्सा आखरत के अंदर है, लिहाजा मैं अपना आखरत का हिस्सा अल्लाह से दुनिया के अंदर लेना नहीं चाहता। हमारा हिस्सा जमा हो रहा है, हमारा हिस्सा अल्लाह के यहाँ जमा हो रहा है, और जब वो सामने आएगा तो कितने गुना होकर के सामने आएगा। इसीलिए जहाँ जन्नत की नेमतों का जिक्र है वहां पर क्या है कि जन्नत की नेमतें ऐसी हैं कि किसी कल्ब के ऊपर कभी उसका गुमान भी नहीं गुजरा कि वो कैसी होंगी, कैसी मीठी होंगी। दूध की नहरें, शहद की नहरें, अल्लाह ताला वहाँ क्या क्या नेमतें अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा फरमाई। की किन किन नेमतों को छुटलाओगे? इंसान अगर अपने जिस्म को ही ले ले, सिर्फ जिस्म पर गौर करना शुरू करे। अगर कोई इंसान आपसे आकर के कहे कि 5 लाख देता हूँ, अपनी दोनों आंखें मुझे दे दो, कोई देगा? बोलो भाई, कोई देगा? नहीं देगा। कोई इंसान आकर के कहे कि अपना मगज 10 लाख रुपए देता हूँ, अपना दिमाग निकाल कर मुझे दे दो, देंगे भाई? नहीं देगा। कोई इंसान आकर के कहता है कि 1 करोड़ रुपए देता हूँ, अपना दिल निकाल करके मुझे दे दे, देगा इंसान? तो अल्लाह ताला ने कितने करोड़ तो हमारे अंदर रखे हैं। दादा ने फरमाया, आज इंसान, एक इंसान क्या कहता है, मौलाना मैं बहुत गरीब हूँ। फरमाया, अपनी जात के अंदर गौर कर, तेरी जात के अंदर अल्लाह ने करोड़ों रुपए रखे, तेरी जात के अंदर करोड़ों रुपए हैं, फिर तू क्यों दुनिया के पीछे भाग रहा है? तो ये माशरत हमें शरीयत ने दी, आज हमने उस माशरत को छोड़ दिया। किस तरीके से कमाया जाए, हलाल और हराम की तमीज किस तरीके से की जाए, आज हमने जब मुआशरत छोड़ दी, आज हम अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं, या अल्लाह हमारी तिजारत के अंदर तो बरकत ही नहीं होती, हमारा तो घराना ही नहीं चल रहा। जब हम शरीयत के मुताबिक चलाएंगे तो फिर अल्लाह ताला बरकत नाजिल फरमाएंगे। और बरकत की तारीफ क्या है, कलील कसीर नफा। देखने में तो छोटी सी दुकान होगी, एक ठेला होगा, लेकिन अल्लाह ताला उसके अंदर इतनी बरकत अता फरमाएंगे कि उससे उसका पूरा घराना खा रहा होगा। इसीलिए जब कुर्ब क़यामत का जिक्र आता है तो हजरत ईसा इब्ने मरियम के बाद, हजरत ईसा इब्ने मरियम जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी निज़ाम कायम हो जाएगा, पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम कायम हो जाएगा, तो उस वक्त क्या होगा, एक अनार एक घर के लिए काफी होगा, एक अनार एक घर के लिए काफी होगा। तो इसका क्या मतलब है, अनार इतना बड़ा हो जाएगा? अनार तो इतना ही होगा जितना होता है, लेकिन अल्लाह ताला बरकत उसके अंदर इतने अदा फरमाएंगे। और एक गंदुम का खोशा एक खानदान की किफालत करेगा। कैसे, क्या खोशा इतना बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा ये माइक है? खोशा तो वही है लेकिन बरकत इतनी आ जाएगी। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन एक खजूर खा करके जिहाद करते थे, एक खजूर खा करके। लोगों ने पूछा साहबा से, ताबईन ने, क्या आप एक खजूर खा करके जिहाद करते थे? फरमाया, खजूर की कदर तो जब पता चली, जब खजूर खत्म हो गई। फरमाया, गुठली भी चूस करके जिहाद करते थे? फरमाया, हाँ, जब गुठली भी खत्म हो गई तब पता चला गुठली से क्या कुव्वत मिलती थी। लेकिन क्या था, इस्लाम को नहीं छोड़ा, इस्लाम को नहीं छोड़ा। आज इंसान सोचता है, यार मेरे आराम के अंदर जरा सी कमी आएगी तो फौरन बैंक की तरफ भागता है कि सूद से कर्जा लेकर के सूदी सूदी निजाम के अंदर दाखिल हो जाओ, सूदी निजाम के अंदर दाखिल हो जाओ। हालांकि सूद का अदना गुना कितना है, अपनी माँ, सूद का मामूली गुना अपनी माँ से जिना करने के बराबर है। आज इंसान क्या सोचता है, हर तरफ मुझे जो है किसी तरीके से बस मुझे आराम मिले, किसी तरीके से मुझे चैन और सुकून मिले। दोस्तों, चैन और सुकून अल्लाह ताला ने माल के अंदर रखा ही नहीं है। अगर चैन और सुकून माल के अंदर होता तो सबसे ज्यादा सुकून के अंदर फिरौन, कारून, हारून, नमरूद, शद्दाद ये होते। लेकिन आज आप अल्लाह, हम अल्लाह वालों के पास क्यों भागते हैं? जब परेशान होते हैं, जब कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं चलो फला अल्लाह वाले के पास। किस लिए अल्लाह वालों के पास जाते हैं? हालांकि ना उनके पास कोई बड़ा बंगला है, ना उनके पास मर्सिडीज गाड़ियां है, ना उनके पास बड़ा बैंक बैलेंस है। वो तो एक चटाई के ऊपर बैठे हुए, एक कपड़े के अंदर बैठे हुए, मस्जिद के अंदर बैठे, अल्लाह के घर के अंदर बैठे, फिर भी हम उनके पास जाकर क्यों कहते हैं हजरत ये परेशानी है इसके लिए तावीज दे दीजिए? बात सोचने की है, अगर सुकून और आराम पैसे में होता तो हमें मालदारों के पास भागना चाहिए था। लेकिन हम भागते क्यों है अल्लाह वालों की तरफ, कि अल्लाह ताला ने फितरी निजाम रखा है, फितरत के अंदर चीज रखी है। अगर एक इंसान का हाथ गैर इख्तियारी तौर पर ख्याल ना हो उसका, बराबर के अंदर उसकी बीवी रोटी पका रही है, तवा रखा हुआ है, गैर इख्तियारी तौर पर बेध्यानी के अंदर उसका हाथ लग गया, हाथ जलेगा या नहीं जलेगा? तो फितरी तकाजा क्या है कि वो फितरतन फौरन भागता है डॉक्टर के पास, या घर के अंदर दवा रखी हो तो उसकी तरफ भागता है। अब उसको कोई ये कहे कि यहीं बैठ करके थोड़ी देर सबर कर, वो कहेगा नहीं। इसी तरीके से जब परेशानी आती है तो इंसान फितरी तौर पर अल्लाह वालों की तरफ मुतवज्जे होता है। क्या मतलब कि इसका इलाज अल्लाह वालों के पास है, इसका इलाज दुनिया के अंदर नहीं है। आज तो ये हालत हो गई कि इंसान क्या कहता है, दुनिया का इलाज दुनिया से करूं, पैसे का इलाज पैसे से करूं। अगर 1 करोड़ कमा लिया तो इसके अंदर जो परेशानी आई, इससे ज्यादा और कमाऊंगा तो शायद ये परेशानियां कम हो जाए। दोस्तों हम कमाते कमाते बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होकर कब्र के अंदर उतर जाएंगे और वही माल दुनिया के अंदर रह जाएगा और उसके ऊपर लड़ाइयाँ किसकी होंगी, सारी औलादें लड़ रही होंगी कि हमारे बाप ने हमारे लिए ये हिस्सा छोड़ा था, वो कहेगा बाप ने मेरे लिए ये जायदाद छोड़ी थी। तो क्या है, अल्लाह वालों की तरफ मुतवज्जे हो। अल्लाह ये हमारी फितरी चीज है, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने फितरतन रखी है कि वो अल्लाह वालों की तरफ मुतवज्जे होता है। क़ज़त ऐसा तावीज़ दे दीजिए, ये मुश्किल आ गई कोई वजीफा बतला दीजिए ताकि मेरी परेशानियां दूर हो जाए। अरे सारी परेशानियों का हल तो अल्लाह ताला ने तकवा के अंदर रखा है कि तुम मुत्तकी बन करके रहो, अल्लाह से डर करके रहो, अल्लाह ताला तुम्हारी सारी परेशानियों को हल कर देगा और कुरान के अंदर वादा है। दोस्तों अगर कोई बड़े से बड़ा अल्लाह का वली तावीज़ दे, वो तावीज़ फेल हो सकता है। दादा ने फरमाया कि बड़े से बड़ा वली कोई तावीज़ दे वो तावीज़ फेल हो सकता है, लेकिन फरमाया अल्लाह ताला जिस चीज का वादा करते हैं कभी अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करते। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डर करके रहता है अल्लाह ताला उसके सारे काम आसान कर देता है। आज हमारे काम आसान क्यों नहीं हो रहे कि हम अल्लाह ताला से डर नहीं रहे, हम अल्लाह की तरफ, जो अल्लाह से डरने का हक है हम अपनी तरफ से डरने का हक हम क्या अदा करेंगे। मा अरफना का हक मारफत, जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं मा अरफना का हक मारफत, ये अल्लाह तेरी मार्फत का हक मुझसे अदा नहीं हो सका, मा अबदना का हक इबादत, न तेरी इबादत का हक अदा हो सका, तो अल्लाह ताला की शान शान हम कितना डरने का हक अदा कर सकते हैं। लेकिन इतना तो कर सकते हैं जितना इंसान के अपने बस के अंदर है उतना तो करे। दादा ने फरमाया बच्चा क्या है, छोटा बच्चा है आपका, अभी चलना सीख रहा है, चल नहीं रहा, चलना सीख रहा है। फरमाया आप उसको उंगली पकड़ा करके चलाते हैं, फिर जब वो उंगली छोड़ देता है तो फरमाया कि आप क्या करते हैं, उसको थोड़ी दूर खड़ा करते हैं और उसको बुलाते हैं बेटा आ जा। फरमाया वो 1-2 कदम उठाता है छोटा बच्चा, फरमाया गिरने लगता है तो बाप की मोहब्बत को जोश आता है, वो आगे बढ़कर अपनी औलाद को खुद गोद में उठा लेता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा गिर जाए और उसको चोट लग जाए। तो फरमाया बाप की मोहब्बत बेटे का नुकसान गवारा नहीं कर सकती, तो अल्लाह की रहमत किस तरीके से गवारा करेगी कि बंदा अल्लाह की तरफ बढ़े और अल्लाह ताला उसकी तरफ न बढ़े। अल्लाह ताला तो क्या फरमाते हैं, तुम मेरी तरफ 1 हाथ आओगे मैं तुम्हारी तरफ 70 हाथ आऊंगा, तुम मेरी तरफ चल कर आओगे मैं तुम्हारी तरफ दौड़ करके आऊंगा। दोस्तों ये है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की मोहब्बत ये, बाप की मोहब्बत महदूद है। अगर बच्चा मुश्किल के अंदर मुब्तला हो गया, बाप दुआ कर सकता है, तावीज़ ले सकता है, अल्लाह ताला से दुआ मांग सकता है, लेकिन अगर बच्चे को कैंसर है तो कैंसर को शिफा अल्लाह के हाथ में। लेकिन दोस्तों अल्लाह ताला की मोहब्बत ऐसी गैर महदूद है कि बंदा अगर कैंसर में भी हो तो अल्लाह ताला उसको शिफा देने पर कादिर है। हमारे शेख हजरत वाले अर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया, फरमाया कि आज हमें मांगना नहीं आता। हजरत ने फरमाया कि मेरे एक दोस्त थे, उनको फालिज हो गया, बम्बई के अस्पताल के अंदर गए, हिंदू डॉक्टर था, फरमाया लेकिन उनके अंदर एक आदत थी कि दुआ बकसरत मांगा करते थे, दुआ बकसरत मांगा करते थे और ऐसे ऐसे अनुराग से दुआ मांगते थे कि इंसान हैरान हो जाता था। तो हिंदू डॉक्टर ने इलाज शुरू किया फालिज का इलाज कर रहा है और ये दुआ कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद इलाज चलता रहा, फिर जब टेस्ट किया तो सही होना शुरू हो गए, यहाँ तक के मुकम्मल सेहतियाब हो गए। तो वो हिंदू क्या कहता है कहते हैं अगर आप मेरे मरीज ना होते और मेरे पास रिपोर्टें लेकर के आते तो मैं कभी ना मानता कि आपको इतना जबरदस्त फालिज हुआ, उसके बावजूद आपको शिफा हो गई। मैं मान ही नहीं सकता था इस बात को, लेकिन आपको देखकर मुझे यकीन हो रहा है कि कोई ना कोई तो ऐसी कुदरत है जो इंसान को शिफा दे सकती है। इसीलिए हजरत क्या फरमाते थे, आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, ये मर्द ला इलाज है। आपका मर्द क्या है, अब ला इलाज हो गया, आप जाकर मौत का इंतजार कीजिए। फरमाया उसको क्या कहना चाहिए, ला इलाज इंदी। मुसलमान डॉक्टर है तो क्या कहें, इस मर्द का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाइए। क्यों, हजरत फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने अगर बीमारी पैदा की है तो बीमारी की शिफा भी अल्लाह ताला ने पैदा की है, हर बीमारी की दवा पैदा की है, भाई इंसान के ढूंढने के अंदर देर है। तो दोस्तों हम जिस तरीके से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वहां अपना वक्त जाया नहीं करते, तो दोस्तों इसी तरीके से हम अल्लाह के यहाँ से जन्नत से भेजे गए हैं दुनिया के अंदर, किस लिए, कमाने के लिए। क्या कमाना है, डॉलर कमाने के लिए नहीं, नोट कमाने के लिए नहीं, यूरो कमाने के लिए नहीं, नेकी कमाने के लिए भेजा गया है कि तुम जाओ जितना ऐश करना है दुनिया के अंदर जाकर उतनी नेकियां कमा लो, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के ऊपर अमल करना शुरू कर दो। दीन के ऊपर जितने हम कामिल होंगे, जितना इत्तेबाए सुन्नत होगी, जितनी इत्तेबाए शरीयत होगी, उतना ही आगे की मंजिल हमारे लिए आसान हो जाएगी। एक इंसान है बाहर से कमा करके आ रहा है, 2 लाख 5 लाख रियाल लेकर के आ रहा है, तो वो जब जहाज में वहां से बैठता है तो उसके चेहरे की खुशी का आलम ही कुछ और होता है। किस लिए, कि उसको आने वाली मंजिल पाकिस्तान नहीं पहुंचा गई, अभी सऊदीया के एयरपोर्ट से जहाज के अंदर बैठा है, लेकिन उसके चेहरे की खुशी दूसरों को बता रही होती है कि ये शख्स यहाँ से कुछ कमा करके अपने मुल्क लेकर के जा रहा है। जब इतना खुश खुश बैठा हुआ है और जब वो अपनी सरजमीन पर उतरता है, अपने मुल्क के अंदर उतरता है, अपने बाल बच्चों के दरमियान में आता है, अपने खानदान वालों के दरमियान में आता है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो कहता है अल्लाह मैंने जितनी मेहनत की थी उसका तूने मुझे नेमुल बदल अता फरमाया। दोस्तों अल्लाह ताला दुनिया में तो नेमुल बदल अता फरमाते, क्या आखिरत में अता नहीं फरमाएंगे। एक शख्स अल्लाह को राजी करने के अंदर लगा हुआ है, अल्लाह को राजी करने के लिए हर गम उठाने के लिए तैयार है, जो भी गम आता है उस गम को अल्लाह की खातिर उठाता है। आज क्या है, इबादत करने के लिए हर इंसान तैयार है, इबादत के लिए हर इंसान तैयार है, लेकिन दादा ने फरमाया गुनाह छोड़ने के लिए कितने लोग तैयार है। फरमाया तक्वा की बुनियाद क्या है, गुनाह छोड़ना तक्वा की बुनियाद है। फरमाया इबादत, इबादत से इंसान मुत्तकी नहीं बनता, गुनाह छोड़ने से इंसान मुत्तकी बनता है। अगर इबादत से बनता तो जितने ज़ईफ लोग बैठे हुए हैं 70 साल से या 50 साल से ऊपर, वो कहते हैं अल्लाह तो हमारी उम्र इतनी हो गई थी, जब हमने तक्वा की बात सुनी तो हमारे अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी कि हम इतनी ज्यादा इबादत कर सकते, लिहाजा हमने इबादत नहीं हुई, हम मुत्तकी नहीं बन सके। फरमाया नहीं, तुम 90 साल के हो जाओ, 100 साल के हो जाओ, जब तुम तक्वा का इरादा करोगे, गुनाह छोड़ने का इरादा करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें अपने प्यारों की फहरिस्त के अंदर शामिल कर लेगा। तुम किसी भी उम्र के हो, किसी भी कौम के हो, किसी भी कबीले से ताल्लुक हो तुम्हारा, किसी भी जात से तुम्हारा ताल्लुक हो, तुमने इरादा किया कि मैं अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा, अल्लाह ताला तुम्हें अपने दोस्तों की सफों में शामिल फरमा लेगा। और दोस्तों वो अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है, इस कायनात को पैदा करने वाला है। अगर एक बादशाह हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दे, सल्तनत का बादशाह हो, और वो कहे कि मुझे आपसे दोस्ती करनी है, तो वो इंसान कितना उछलता फिरता है। बोलो भाई, वो क्या कहेगा, अब तो इस सल्तनत के अंदर मुझे कोई रोक करके दिखलाए, मुझे कोई रोक करके दिखलाए। भाई क्यों भाई, इस मुल्क इस सल्तनत का बादशाह मेरा दोस्त है। तो दोस्तों जिसको अल्लाह ताला जिसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए उसका क्या आलम होगा। इसीलिए हदीस पाक के अंदर क्या फरमाया, मन तकल्लाह अज़ वजल सार फी बिलादिहि आमिना, जो अल्लाह से डर करके रहता है सारे जहान में जहां भी जाता है अल्लाह ताला उसको अमन से रखते हैं, हमेशा अमन से रहेगा। ये थी माशरत, अब इबादत है, अब इबादत है। खानकाहों के अंदर सारी चीजें सिखाई जाती हैं, मुआशरत भी सिखाई जाती है, इबादत भी सिखाई जाती है। हजरत हकीम उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास हजरत के खलीफा है अपने छोटे बच्चे के साथ हजरत की खानकाह में वक्त लगाने के लिए। हजरत ने पूछा कैसे आए, वहां पूछा जाता था हजरत क्या निजाम था, मालूम किया जाता था। फरमाया हजरत बाई ट्रेन आया हूं। तो हजरत ने ऐसे ही पूछ लिया कि बच्चे का टिकट लिया था आपने या नहीं, बच्चे का टिकट लिया था आपने या नहीं। उन्होंने कहा हजरत नहीं। कहा वो स्टेशन मास्टर दोस्त था, उसने कहा 2 महीने अगर इसकी उम्र कम बतला दोगे तो इस बच्चे का टिकट नहीं लगेगा, लिहाजा मैंने 2 महीने कम बतला दिया, मुफ्त के अंदर आ गया, बच्चे को मुफ्त के अंदर लेकर आ गया। हजरत मोहम्मद हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त खिलाफत वापस ले ली, उसी वक्त खिलाफत वापस ले ली। फरमाया जो शख्स थोड़े से किराए के लिए झूठ बोल सकता है वो खिलाफत के काबिल नहीं है, खिलाफत वापस कर दीजिए। खिलाफत जब्त हो गई। खिलाफत का मतलब ये नहीं है कि आप जो जी चाहे करो, नहीं। खिलाफत दादा ने फरमाया कि खिलाफत जिसको मिल जाए वो ये समझे कि मैं चोर हूँ, और चोर को अगर कभी थानेदार बना दिया जाए तो ये क्या सोच करके बनाया जाता है, शायद शर्म की वजह से चोरी ना करे, शर्म की हया की वजह से चोरी ना करे कि यार मैं इस इलाके का थानेदार हूँ और मैं खुद चोरी करूँ। इसलिए बार दफा मशाइख ने गुमान करके खिलाफत दे देते हैं कि चल तुझे खिलाफत दे दी कि शायद इसको हया है कि ये गुनाह छोड़ दे। लेकिन आज हम खिलाफत को समझते हैं बड़ा मनसब है। अरे बड़ा, जितना बड़ा मनसब होता है उतनी भारी जिम्मेदारी होती है, उतनी भारी जिम्मेदारी होती है। जितना ज्यादा इल्म होगा उतनी ज्यादा पकड़ होगी। इसीलिए आलिम का हिसाब और गैर आलिम का हिसाब दोनों में फर्क है। आलिम से जो हिसाब लिया जाएगा उसके अंदर फर्क होगा, और गैर आलिम है उसके पास इल्म नहीं है, इल्म नहीं था तो अमल नहीं कर सका। लेकिन एक शख्स आलिम है, अल्लाह ताला ने उसको इल्म अता फरमाया, नबुवत का नूर, नबुवत का इल्म उसके सीने के अंदर था, इल्म नबुवत उसके सीने के अंदर है, उससे हिसाब किताब दिया जाएगा और सख्त दिया जाएगा। आज हम क्या चाहते हैं कि मौलाना में कोई ऐसा मजमून बयान हो जो हमने कभी सुना ही ना हो, कोई ऐसा मजमून बयान किया जाए जो हमने कभी सुना ही ना हो। अल्लाह के बंदे अपने इल्म के अंदर इजाफे का मकसूद लेकर के ना आए, बल्कि ये इजाफे ये मकसूद लेकर के आए कि अल्लाह जो इल्म तूने मुझे अता फरमाया है, या अल्लाह तूने जो इल्म मुझे अता फरमाया है उसके ऊपर मुझे अमल की तौफीक अता फरमा दे वहां जा करके। अगर अमल की तौफीक हो गई तो दोस्तों हमारा आना मिल बैठना ये चाराना बन जाएगा, वरना एक आना भी नहीं रहेगा, ये एक आना भी नहीं रहेगा। अगर अमल की तौफीक नहीं हुई, खाली इल्म रहा, कोई एक चीज काफी नहीं है। इल्म अगर एक इंसान के पास खाली इल्म है, वो कहता है मैं फकीह हूं, मैं मुहद्दिस हूं, मेरे पास इतना इल्म है लेकिन अमल नहीं करता, तो काफी नहीं है। इल्म के साथ अमल लाजिम है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, एक शख्स के पास खाने पीने, दादा ने फरमाया कि हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ने इसकी मिसाल दी। फरमाया एक शख्स का कुत्ता मर रहा था, कुत्ता मर रहा था और वो शख्स रो रहा था। लोगों ने पूछा भाई क्यों रो रहे हो, तो कहने लगा कि मेरा कुत्ता मर रहा है। पूछा क्यों मर रहा है, कहा भूख की वजह से, सर पर एक टोकरी रखी हुई थी। पूछा है टोकरी के अंदर क्या है, कहा रोटियां। तो कहा कि डाल दे एक रोटी इसके आगे, अभी खा लेगा फिर जिंदा हो जाएगा। तो उसने क्या कहा, उसने कहा मियां आंसू तो मुफ्त के हैं लेकिन रोटी तो पैसों से आई है, लिहाजा अब उसके आंसू बहालू कौन सा रोटी वो खर्च रोटी के पैसे लगा इसके ऊपर, मर रहा है तो मरने दो। तो दोस्तों आज हमने इल्म को यही समझ लिया कि इल्म तो हासिल कर लिया लेकिन अमल के अंदर यार थोड़ी सी हमें जो है मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, थोड़ा सा गम बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ी सी लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे थोड़े दिन मजाक उड़ाएंगे फिर उसके बाद यही लोग दुआ कराने आएंगे। ये अल्लाह का दीन है दोस्तों, ये दीन है नबू, ये वो दीन है जिसके ऊपर अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम का खून मुबारक बर्दाश्त किया है। आज हम इस दीन को मामूली दीन समझते हैं, कह रहे दीन के अंदर क्या रखा है, अल्लाह ने हमें क्या दिया है, इस दीन के अंदर है क्या। ये वो दीन है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक बह रहा है। अगर अल्लाह ताला चाहते तो जिब्राइल अमीन को भेजते और उसी वक्त जितने काफिर थे सब हलाक कर दिए जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, किसी ने नहीं किया कि बाद में आने वाली उम्मत को मालूम हो जाए कि जो दीन मैं नाजिल कर रहा हूँ इस दीन के ऊपर मैं सैयदुल अंबिया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर खून मुबारक बर्दाश्त कर सकता हूँ तो तुम्हारा खून और तुम्हारी कुर्बानी क्यों नहीं होगी। इसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून मुबारक सहाबा जान देते थे, सहाबा जान देते थे अपनी मजाज भी किसी काफिर की के सहाबा के आ गया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ पूरी नजर से देख ले, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने खून बहाया। हालांकि ऐसे वफादार सहाबा कि अल्लाहु अकबर कबीरा जिसकी मिसाल नहीं मिलती, ऐसी वफा की मिसाल नहीं मिलती दुनिया के अंदर। अल्लाह ने वो सहाबा अता फरमाया कि अल्लाह अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ग़ज़वा बदर के अंदर सहाबी जख्मी हुए, जख्मी होने के बाद जब आखिरी वक्त आया तो अपनी गर्दन को नबी अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के अंदर लिया, कदम मुबारक के अंदर लिया कि मेरे रूह निकले तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के ऊपर निकले। लेकिन यह गवारा नहीं था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक जर्रा बराबर तकलीफ पहुंच जाए। आज हम दोस्तों आज अब जो लोग गुनाह की तहकीर तो वाजिब है लेकिन गुनाहगार की तहकीर हराम है। लिहाजा आजमत के साथ कहता हूँ कि मेरे मुसलमान भाइयों जिन्होंने दाढ़ियां नहीं रखी तुम हम गौर से सोचें कि हम किसकी सुन्नत जिंदा कर रहे हैं, हम किसकी सुन्नत जिंदा कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी थी या नहीं थी, जी मुसलमान के लिए इससे बढ़कर दलील और कोई दलील हो ही नहीं सकती। अगर मुसलमान है ईमान लाया है और दावा करता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है मेरे दिल के अंदर तो उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखी या रसूलुल्लाह आपका हुक्म सर आंखों के ऊपर, उसके बाद ये दलील मांगना कि कुरान के अंदर दाढ़ी कहाँ है, हदीस के अंदर दाढ़ी कहाँ है, ये दलील है कि अभी इश्क कामिल नहीं हुआ, अभी इश्क कामिल नहीं हुआ। दोस्तों जब अल्लाह ताला किसी को अपना बनाते हैं तो फिर सारी हिम्मतें अता फरमाते हैं। लिहाजा दाढ़ी हो या ना हो एक दफा नमाज के बाद ये दुआ कर लिया करो कि अल्लाह तू मुझे अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले। बस मोहब्बत दोनों आलम में जाकर यही पुकार आई, मोहब्बत दोनों आलम में जाकर यही पुकार आई, जिसे खुद यार ने चाहा उसी को याद यार आई, मोहब्बत दोनों आलम में जाकर यही पुकार आई, जिसे खुद यार ने चाहा उसी को याद यार आई। जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं फिर उसको हिम्मत तकवा भी अता फरमा देते हैं, हिम्मत तकवा भी अता फरमा देते हैं। फिर कोई कुछ कहता रहे वो कहता है मैं अपने अल्लाह के रास्ते के ऊपर चल रहा हूं। तो दोस्तों जिस तरह माशरत है उसी तरीके से इबादत है, माशरत है उसके बाद इबादत है, इबादत नमाज रोजा हज जकात ये जितनी चीजें सारी इबादत के अंदर है, ये सारी इबादतें मुस्बता है, लेकिन आप इनके लिए लवाजिमात है, कोई ना कोई लवाजिम तो होगा भाई। इबादत के ऊपर अमल करने के लिए इल्म चाहिए, एक इंसान है उसको नमाज पढ़नी ही नहीं आती तो नमाज कैसे पढ़ेगा, उसको किसी आलिम से रुजू करना पड़ेगा कि मैं नमाज पढ़ना सीखना चाहता हूँ कि नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है। तब जब भाई आएगी जबी जबी पढ़ेगा ना, एक शख्स को इल्म ही नहीं है कि नमाज पढ़े किस तरीके से जाती है, ये इल्म तो हो गया कि नमाज है लेकिन अब नमाज पढ़ेंगे कैसे, फजर के कितने रकात हैं, जोहर की कितने रकात हैं, असर की कितने रकात हैं, मगरिब की कितने रकात हैं, ईशा की कितने रकात हैं, कितने सुन्नत हैं, कितने नवाफिल हैं, विसर की कितने रकात हैं। ये जब किसी आलिम के पास जाएगा सब सीखेगा। आलिम से क्या मिला इबादत के अंदर, इल्म मिल गया, आलिम से इल्म मिल गया। अब खानकाहों से क्या मिलेगा, खानकाहों से उस इबादत को करने के अंदर जो जान पैदा होती है वो हासिल होती है। खानकाह से क्या चीज हासिल होती है, एक इंसान है उसको इल्म है, क्या नमाज का भी इल्म है कि नमाज क्या चीज है, और ये भी इल्म है कि पढ़ी कैसे जाती है, लेकिन आप उसकी नमाज देख ले। इसीलिए हजरत हकीम उम्मत ने क्या फरमाया, आरिफ की दो रकात गैर आरिफ की एक लाख रकात से अफजल है। आरिफ क्या मतलब, अल्लाह को पहचान करके खड़ा होने वाला, अल्लाह की अजमतों को सामने रखकर अल्लाह के सामने खड़ा होने वाला कि मैं किस मालिक के सामने खड़ा हूँ। दादा ने एक बुजुर्ग का वाकया सुनाया कि फरमाया कि जब अजान होती थी तो फरमाया कि जब वजू करने बैठते थे तो उनके बाल ये जो थे ये खड़े हो जाते थे खौफ की वजह से। लोगों ने पूछा हजरत ये क्या मामला है कि आपके बाल खड़े हो जाते हैं, फरमाया इतने बड़े मालिक ने मुझे अपने घर के अंदर याद किया है, ये सोच करके मेरे बाल खड़े हो जाते हैं कि उस मालिक की बारगाह में मैं किस मुंह से जाऊंगा। शेख अब्दुल हक रदौली रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हिंदुस्तान के अंदर, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जज्ब गालिब किया था, ऐसा जज्ब था कि दादा ने फरमाया कि 40 साल एक मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी 40 साल, लेकिन फरमाया कि रास्ता याद नहीं हुआ उनको 40 साल। आज तो हम दो दफा अगर एक रास्ते से गुजर जाते हैं तो भी हमें रास्ता याद हो जाता है। फरमाया ऐसा अल्लाह ताला ने उनको जज्ब फरमाया था और जज्ब की ऐसी कैफियत उनके ऊपर थी कि 40 साल तक एक मस्जिद के अंदर आते जाते रहे, नमाज पढ़ते रहे, लेकिन रास्ता याद नहीं हुआ। जब भी नमाज का वक्त होता तो खादिम आगे हक हक कहकर के चलता और ये उसके पीछे पीछे जाते, नमाज पढ़ते और वापस आ जाते। एक दफा निकले, दादा ने इनके जो आपसे और सुनाया था, फरमाया कि एक दफा निकले कहीं जाने के लिए तो एक दरिया के किनारे नमाज के लिए रुके, उसके बाद जिक्र में मशगूल हो गए। फरमाया ऐसे गुम हुए, ऐसे अल्लाह की याद के अंदर गर्क हुए कि ये भी भूल गए कि मैं निकला कहाँ था जाने के लिए, और खादिम जो था उसकी हिम्मत था वो बताने के लिए कि हजरत हमें कहीं जाना भी है, यहाँ तक के हजरत एक हफ्ता वहीं बैठ कर इबादत करते रहे। एक हफ्ते के बाद एक दिन कुछ थोड़ा सा होश आया तो पूछा कि अरे ये रदौली के अंदर दरिया कहाँ से आ गया, कहा हजरत दरिया रदौली के अंदर नहीं आया, आप रदौली के बाद आ गए, आप दरिया के पास आ गए। तो फरमाया अरे भाई जल्दी चलो वापस, ज्यादा दिन घर से दूर रहना अच्छा नहीं है, चलो वापस चलो, फौरन फौरन वापस आ गए। लेकिन मजदूर दादा ने फरमाया मजदूर का हर अमल जो है काबिल अमल नहीं होता, पहले पूछ लिया जाए, मजदूर का हर अमल काबिल अमल नहीं होता, पूछ लिया जाए। हजरत की मुरम्मत हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह के खानकाह के अंदर एक मजदूर था, तो हजरत की मुरम्मत हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह से एक साहब ने कहा कि हजरत ये शख्स देखे अल्लाह ताला ये मजदूर है, ये फरमाया ये मजदूर को छोड़ो जाजिद की तरफ भागो, मजदूर को छोड़ो जाजिद की तरफ भागो, जो मजदूर हो गया वो तो हो गया, अब तुम्हें मजदूर बनना है तो जो खींचने वाला है उसकी तरफ भागो। एक बादशाह अपनी जो आजकल बनाए जाते हैं फ्लैट, उनके अंदर बालकनियां बनाई जाती हैं। तो पुराने जमाने के अंदर जो महल्लात बनाए जाते थे उसके अंदर बादशाह शाम में बैठने के लिए बालकनी बनाई हुई थी। तो बादशाह बालकनी में बैठा हुआ था, नीचे देख रहा था, एक फकीर जा रहा था। बादशाह ने कहा वो फकीर इधर आ। उसने कहा कैसे आओ? तो बादशाह ने सोचा कि अगर इसको महल के दरवाजे के रास्ते बुलाओ, ये वाक्य भी दादा ने सुना है कि महल के रास्ते के दरवाजे से बुलाओ तो पता नहीं कितना वक्त लगेगा, कितना घूम करके आएगा। कहा रुक यहाँ पर। बादशाह उठा, एक रस्सी उठाई, नीचे फेंकी, नीचे फेंक करके उसको ऊपर खींच लिया। जब ऊपर खींच लिया तो उसने फकीर ने पूछा जी हुजूर आपने कैसे बुलाया? उसने कहा ऐसे ही बुलाया जी। तो कहा कि आपने तो ऐसे ही बुलाया, मैं कुछ पूछ लूं? कहा पूछो। कहा बादशाह कैसे बने, ये मकाम आपको कैसे मिला? कहा जैसे तुझे ये मकाम मिला कि तुझे रस्सी से मैंने खींच लिया, तू ऊपर आ गया, अब बादशाह के साथ बैठा हुआ है। नीचे रोड पर था तो फकीर था, अब ऊपर आकर बादशाह का हम मशीन बन गया, इसी तरीके से मैं बादशाह बनाऊ। तो जिसको अल्लाह ताला जस्ट फरमाते हैं उसको अपनी तरफ, अल्लाह यस्तवी इलैहि मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं अपनी तरफ जस्ट फरमाकर अपना बना लेते हैं। दोनों रास्ते अल्लाह ने बयान फरमाए, एक तो मेहनत का कि इंसान इबादत करता है फिर अल्लाह तक पहुंचता है, और एक रास्ता जस्ट का है कि अल्लाह ताला पहले जस्ट फरमा देते हैं फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसको इबादत की हिम्मत और तौफीक अदा फरमाते हैं। लेकिन इबादत हर हाल में करनी पड़ती है। अगर कोई इंसान ये सोचे कि हमें इबादत तो करनी नहीं है, इबादत तो मैं करूंगा नहीं, बगैर इबादत के मुझे जन्नत मिल जाए, भाई ऊपर की लाइट जल रही है उसको बंद कर। हमें इबादत तो करनी नहीं है, बगैर इबादत के जन्नत मिल जाए, तो बगैर इबादत के जन्नत मिल जाना। इसी तरीके से एक इंसान रात को सोए और दुआ करके सोए कि अल्लाह सुबह मुझे बादशाहत मिल जाए, और उठ करके सुबह जो है ढूंढे कि मेरा ताज कहाँ है और मेरा महल कहाँ है, तो लोग पूछेंगे कैसा ताज और कैसा महल। वो कहेगा रात को तो मैं दुआ करके सोया था कि मुझे अल्लाह बादशाहत दे दे। तो बादशाहत के लिए भी अल्लाह ताला ने मेहनत रखी है, बादशाहत के लिए भी अल्लाह ने मेहनत रखी है। तो दुनिया का एक मकाम बगैर मेहनत के नहीं मिलता, दुनिया का एक मकाम बगैर मेहनत के नहीं मिलता। तो मेरे थोड़ा सा वक्त रह गया, खास तौर पर मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ जो लोग खानकाह के अंदर वक्त लगाने के लिए आए, दोस्तों अपना वक्त जाया मत करो, अपना वक्त जाया मत करो। यहाँ किसी भी पुराने से अपनी नमाज की तस्वीर कर लो, अव्वलन अजान की, उसके बाद इकामत की, उसके बाद अपने कुरान करीम की, फिर नमाज की। ये वक्त जाया करने का नहीं है, अगर जाया कर दिया तो फिर क्या होगा? इस वक्त का हिसाब लिया जाएगा, इस वक्त का हिसाब लिया जाएगा कि वक्त गए थे क्या सीखा वहां पर। कि अल्लाह हम तो सिर्फ चाय पीते रहे, टेलीफोन पर बातें करते रहे, इधर उधर गपशप लड़ाते रहे, इधर उधर घूमते रहे, दोस्तों और यारों के अंदर बैठते रहे, तो अल्लाह ताला क्या पूछेंगे। इसीलिए हमारे शेख हजरत वाले अर्दी रहमतुल्लाह ने क्या दो सालिकीन को आपस में बातचीत करने की इजाजत नहीं थी, दो सालिकीन को आपस में बातचीत करने की इजाजत नहीं थी। इसलिए हजरत फरमाते थे अस्पताल के अंदर जाकर के देखो, कोई मरीज किसी मरीज से बात कर रहा होता है, अगर कर रहा होता है तो डॉक्टर आके मना कर देता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप इलाज कराने आए, बात करने के लिए आए। तो फरमाया मेरे खानकाह भी एक अस्पताल है जहाँ रूहानी इलाज किया जाता है, एक जिस्मानी मालिज है, एक रूहानी मालिज है। तो जो रूहानी जिस्मानी इलाज के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं? अरे डॉक्टर ने कहा है फौरन मार ले। रिश्तेदार भी क्या कहते हैं? अरे डॉक्टर कह रहा है ये कड़वी दवा पी ले बेटा, शिफा हो जाएगी तुझे। रिश्तेदार समझाते हैं तो क्या होता है? फौरन समझ में आती है। किस लिए? इसलिए कि पैसे लेकर के इलाज करा रहा है। तो दोस्तों यहाँ रूहानी इलाज कराने के लिए जाता है, ये रूहानी इलाज अल्लाह वाले मुफ्त के अंदर करते हैं। खाना भी मुफ्त के अंदर मिल रहा है, रहना भी मुफ्त के अंदर मिल रहा है, सोना भी मुफ्त के अंदर है, चांद की चाय भी मुफ्त के अंदर है, तो अब क्या है उसकी कदर नहीं करता इंसान। जहाँ पैसे दे रहा है वहाँ कदर कर रहा है, और जहाँ पैसे नहीं दे रहा वहाँ कदर नहीं कर रहा। तो ऐसा ना करे, कदर जो वक्त दिया अल्लाह ताला ने उस वक्त की कदर करे। जितने वक्त के लिए आया, जितने वक्त के लिए आया, कम से कम अपनी नमाज सुन्नत के मुताबिक करके जाए। इसीलिए आरिफ और गैर आरिफ का जो फर्क समझा रहा था, खानकाह के अंदर क्या सिखलाया जाता है कि अल्लाह के सामने खड़े तो हो लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ है। अल्लाह वालों से क्या सीखा जाता है कि जिस वक्त तुम अल्लाह के सामने खड़े हो उस वक्त तुम्हारा दिल कहाँ है। हम खड़े होते हैं, हमारा दिल कहाँ होता है? बाजार के अंदर। हमारा दिल कहाँ होता है? तिजारत के अंदर। हमारा दिल कहाँ होता है? अपने घर के अंदर। हमारा दिल कहाँ होता है? अपने बाल बच्चों के अंदर। हमारा दिल कहाँ होता है? यार आज पता नहीं कमाई कैसी होगी कैसी नहीं होगी। एक इमाम साहब ने ईशा की नमाज पढ़ाई, गलती से 3 रकात पढ़ा दी, तो नमाजियों के अंदर झगड़ा शुरू हो गया। बाजों ने कहा 3, बाजों ने कहा 4। तो एक शख्स था वो खड़ा हुआ, उसने कहा इमाम साहब ने 3 रकात पढ़ाई है और मैं इसके ऊपर कसम उठा सकता हूँ। कहा कि कसम, आप कैसे कसम उठा लेंगे? उसने कहा मेरी 4 दुकानें, मेरी 4 दुकानें और हर रकात में मैं 1 दुकान का हिसाब करता था, आज 3 का हिसाब किया और इमाम साहब ने सलाम फेर दिया। मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह मेरी चौथी दुकान रह गई। तो जब नमाज हमारी ऐसी होगी तो अल्लाह क्या क्या मकबूल होगी, तो हमारी क्या नमाज कबूल होगी। अल्लाह वालों के पास जाकर के क्या सीखा जाता है कि जब तुम नमाज में खड़े हो तो तुम्हारा दिल किस तरफ है, तुम किसके सामने खड़े हो, किसको सजदा कर रहे हो। जब दिल के अंदर उसकी अजमत होगी तो सजदा भी अजमत के साथ अदा करेगा। अरकान नमाज आज क्या है, हमें तो एक मच्छर भी बैठता है तो फौरन पता चल जाता है नमाज के अंदर कि हमारे फलाने कान के ऊपर फला हिस्से के ऊपर मच्छर बैठा हुआ है। मालूम होता है नहीं होता, मक्खी बैठ जाए फौरन ये नमाज हो रही है। قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, تحقیق کے وہ مسلمان فلاح پا گئے, الذين هم في صلاتهم خاشعون کہ جن کی نماز کے اندر خشوع ہے, یعنی ساکنون فی الجسم خاشعون فی القلب. اس کی تشریح کیا فرمائیے کہ جسم کے اندر سکون ہو, معلوم ہو کہ کسی کے سامنے کھڑا ہے. اگر کسی بادشاہ کے سامنے انسان کھڑا ہو تو بتاؤ ہاتھ ہلائے گا؟ शेख के सामने खड़ा हाथ हिलाएगा? वहां तो ऐसे खड़ा होता है जैसे इसका जिस्म पत्थर का बन गया, किस लिए शेख देख रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से इससे ज्यादा यकीन ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। और दलील क्या है, अलम यालम भी अल्लाह है यारा, क्या इंसान को इतना भी ख्याल नहीं है कि अल्लाह ताला उसको देख रहा है हर वक्त। जब इस ख्याल के साथ नमाज पढ़ेगा तो उसकी लज्जत और उसका मजा कुछ और होगा, उसकी लज्जत और उसका मजा कुछ और होगा। इस ख्याल के साथ जब सजदा करेगा कि मैं अल्लाह के कदमों के दोनों कदमों के दरमियान अपना माथा रख रहा हूँ, फिर जो लज्जत होगी वो लज्जत कुछ और होगी। फिर जब रुकू करेगा कि मैं अल्लाह के सामने रुकू करता हूँ, तो फिर उस रुकू का मजा कुछ और होगा। फिर 2 रकात वो ऐसी होगी कि गैर आरिफ की 1 लाख रकात से ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए आरिफ और गैर आरिफ खानकाओं के अंदर क्या क्या कहा जाता है, पहचान कराई जाती है अल्लाह ताला से, पहचान कराई जाती है। दादा ने क्या फरमाया, फरमाया इसकी मिसाल क्या है कि आपका एक दोस्त है, आपका एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है, आपके वालिद ने आपको घर बुलाया, घर बुलाकर के कहा बेटा ये मिठाई ले लो। आपने मिठाई ले ली, लेने के बाद फरमाया अब्बा ये जो मेरा दोस्त है ये मेरा बचपन का दोस्त है, मैं चाहता हूँ जो इनाम और इकराम जो मिठाई आप मुझे दे रहे हैं वो इसको भी दीजिए। तो बाप क्या कहता है, चल तेरा दोस्त है तेरी वजह से इसको दे रहा हूँ। तो फरमाया अल्लाह वालों के साथ जब रहोगे तो फिर अल्लाह वाले जब नमाज पढ़ते हैं और जब दुआ करते हैं तो वो क्या कहते हैं, या अल्लाह जो इनाम और इकराम तू मुझ पर कर रहा है, या अल्लाह ये सारे मेरे साथ रहने वाले, मेरे साथ नमाज पढ़ने वाले, मेरे साथ अल्लाह अल्लाह करने वाले, या अल्लाह जो इनाम और इकराम तू मुझ पर कर रहा है इन पर भी करते हैं, इनको भी महरूम न फरमा। तो फरमाया जिस तरीके से बाप महरूम नहीं करता, फरमाया इसी तरीके से अल्लाह ताला भी महरूम नहीं फरमाते। Thank you. मैं अब निकाह भी है बस बात में यही समेटता हूँ। अल्लाह ताला हमें असल मार्फत अपनी अता फरमाए और जो वक्त मिला है हमें अल्लाह ताला इस वक्त की कदर करने की तौफीक अदा फरमाए, इस वक्त की कदर करने की तौफीक अदा फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वही निकाह वाले हजरात जल्द से जल्द आगे तशरीफ ले आए और जिन हजरात ने नमाज की तैयारी न की हो नमाज की तैयारी कर ली।
सैयद मुदस्सिर अली।